87 संख्या की कारिका है, भेदानुकारो ज्ञानस्य वाचश्चो पप्लवो ध्रुवः क्रमोपसृष्ट रूपाया ज्ञानम ज्ञेयम व्यपाश्रयम्। ये ज्ञानम ज्ञेय व्यपाश्रयम् जो है ये एक टुकड़ा के रूप में भी परीक्षा में आ सकता है कि इसका मतलब बताइए, आशय बताइए। तो इसका अन्वय जो करेंगे उसमें ऐसे ही करेंगे कि ज्ञानम ज्ञेय व्यपाश्रयम् अतः ज्ञानस्य भेदानुकारः तथा क्रमोपसृष्ट रूपायाः वाचः उपप्लवः ध्रुवः भवति। फिर से एक बार बता देता हूँ, ज्ञानम ज्ञेय व्यपाश्रयम् अतः ज्ञानस्य भेदानुकारः तथा क्रमोपसृष्ट रूपायाः वाचः उपप्लवः ध्रुवः। ये ज्ञान जो है वह ज्ञेय व्यपाश्रय होता है, इसीलिए ज्ञान का भेदानुकार होता है और क्रमोपसृष्ट रूप जो बाक है, वाणी है, उसका उपप्लव ध्रुव होता है। ये तो शब्दार्थ हो गया, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ जो ज्ञानम ज्ञेय व्यपाश्रयम् में ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान लेना है? शुद्ध ज्ञान लेना है, जिसमें कोई आकार न हो, निराकार ज्ञान जो है, शुद्ध ज्ञान जो है, एक ज्ञान जो है, उस ज्ञान को लेना है। वह जो शुद्ध ज्ञान है, निराकार ज्ञान है, वह ज्ञान ज्ञेय व्यपाश्रय होता है, माने ज्ञेय पर आश्रित होता है। उस ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का निरूपण नहीं संभव है। शुद्ध ज्ञान को बता नहीं सकते हैं कि शुद्ध ज्ञान ऐसा है, इदम ज्ञानम एतादृशम, इस तरह से जो है ना शुद्ध ज्ञान का निरूपण नहीं हो सकता। ज्ञान का निरूपण होने के लिए कोई न कोई ज्ञेय चाहिए, ज्ञेय चाहिए माने कोई न कोई विषय चाहिए, और उस विषय को लेकर के ही जो है ज्ञान का निरूपण किया जा सकता है। मान लीजिए कि घट का ज्ञान है, तो जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि इदम ज्ञानम घटीयम, यह जो है घटीय ज्ञान है, तब तक श्रोता जो है कैसे समझेगा कि किसका ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, नहीं समझेगा। जैसे मान लीजिए कोई मूक है, कोई गूंगा है, उसको गुड़ खिला दीजिए तो और पूछिए कि गुड़ कैसा लगा, तो वो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। ऐसे ही शुद्ध जो ज्ञान होता है वो बताने के योग्य नहीं होता, उसका निरूपण संभव नहीं होता। निरूपण तब संभव होता है जब कोई ज्ञेय को आश्रय में लेकर के, किसी विषय को आश्रित करके जब उस ज्ञान को हम बताते हैं, तभी उस ज्ञान का निरूपण होता है। यही इसका तात्पर्य है। तो ज्ञेय व्यपाश्रयम्, ज्ञेय माने ज्ञान का विषय, व्यपाश्रयम् का अर्थ कर लीजिए आश्रितम्, कि ज्ञान जो है वह ज्ञेय पर आश्रित होता है। क्या अर्थ होगा ज्ञानम ज्ञेय व्यपाश्रयम् का? कि ज्ञान ज्ञेय पर आश्रित होता है। शुद्ध ज्ञान जो है वह अपने विषय पर आश्रित होता है। जब तक उसमें ज्ञान स्विषयक नहीं होगा, तब तक उसका निरूपण नहीं हो पाएगा। ज्ञान जब निर्विषयक रहेगा तो उसका निरूपण नहीं होगा। इसलिए जो स्विषयक ज्ञान होता है उसी का निरूपण किया जाता है। अब यहाँ जो ये जो है ना, ये सिद्धांत हो गया कि ज्ञानम ज्ञेय व्यपाश्रयम्, ज्ञान जो है वह ज्ञेय पर आश्रित होता है, ज्ञान जो है वह स्विषयक होता है। इसीलिए ज्ञानस्य भेदानुकार है, इसीलिए क्या होता है कि ज्ञान का भेदानुकार होता है, माने भेदानुकार माने भेद प्रतीति। ज्ञान में जो भेद प्रतीति होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वह ज्ञान ज्ञेय पर आश्रित होता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझिए कि घटक ज्ञानम पटक ज्ञानाद भिन्नम इति यह व्यवहार है। घट ज्ञान जो है वह पट ज्ञान से भिन्न होता है, इस तरह का जो व्यवहार है यही है ज्ञान का भेदानुकार, ज्ञान की भेद प्रतीति। अब घट ज्ञान से जो है पट ज्ञान का भेद समझ में आता है। इससे घटक ज्ञानम पटक ज्ञानाद भिन्नम, इस तरह का अगर ज्ञान है तो इस ज्ञान में घट का ज्ञान पट ज्ञान पट के ज्ञान से भिन्न प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये जो ज्ञान का जो भेदानुकार हुआ है, ज्ञान में जो भेद प्रतीति हुई है वो क्यों हुई है, वह ज्ञेय के कारण हुई है। क्योंकि ज्ञान जो है वह ज्ञेय व्यापाश्रय होता है, ज्ञान जो है ज्ञेय पर आश्रित होता है और ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भी भेद हो जाता है। अब जैसे घट ज्ञान भी ज्ञान है और पट ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञेय के भेद से इसमें ज्ञान में भेद हुआ। ज्ञेय कौन है? घट ज्ञान में ज्ञेय है घट, पट ज्ञान में ज्ञेय है पट। तो ये ज्ञेय जो घट पट है इसके कारण से ज्ञान में भी भेद हो गया घट ज्ञान और पट ज्ञान में। वस्तुतः ज्ञान जो है वह तो शुद्ध होता है, लेकिन उसमें जो ज्ञान में भेद की प्रतीति होती है वो ज्ञेय व्यापाश्रय होने के कारण, ज्ञेय पर आश्रित होने के कारण। तो यही यहाँ बताया कि ज्ञानम ज्ञेय व्यापाश्रयम भवति, अतः ज्ञानस्य भेदानुकार। इसीलिए ज्ञान में भेदानुकार होता है, ज्ञान में परस्पर भेद की प्रतीति होती है। इसी तरह से जैसे ज्ञान में ज्ञेय के कारण भेद प्रतीति होती है, वस्तुतः ज्ञान जो होता है वह शुद्ध होता है, उसी तरह से स्फोट जो है वह अपने आप में शुद्ध है, अखंड है, एक है, किंतु ध्वनि उसका जो ग्राहक है, उसका जो उपाय है ध्वनि, उस ध्वनि के भेद के कारण स्फोट में भी भेद की प्रतीति होती है, वस्तुतः स्फोट में कोई भेद नहीं होता। तो यहाँ ज्ञान का उदाहरण दे करके स्फोट और ध्वनि की बात बताई गई है। चलिए अब दूसरी पंक्ति को देखते हैं कि क्रमोपसृष्ट रूपायाः, क्रमिक जिसके स्वरूप का ज्ञान हो, ऐसा किसका ज्ञान होता है? तो वाचः, तो वाणी का जो है क्रमिक जो ज्ञान होता है, जैसे घटः है तो घटः में पहले घ का ज्ञान होगा, फिर घकारोत्तरवर्ती अकार का ज्ञान होगा, फिर अकारोत्तरवर्ती टकार का ज्ञान होगा, फिर टकारोत्तरवर्ती अकार का ज्ञान होगा। इस तरह से क्रमोपसृष्ट रूप वाक का ज्ञान होता है, माने क्रमिक तो समझते हैं ना, पूर्व पर क्रम जिसमें हो, और उपसृष्ट जो है क्रमोपसृष्ट, उपसृष्ट मतलब संश्लिष्ट, संश्लिष्ट मतलब मिश्रित या युक्त कह लीजिए। तो क्रम से युक्त जिस स्वरूप का ज्ञान, जिसके स्वरूप का ज्ञान होता है, ऐसी जो वाणी है, वह वाणी कौन? स्फोट रूप वाणी। उस स्फोट रूप वाणी में वास्तविक में कोई क्रम रम नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, लेकिन जैसे ज्ञेय के कारण ज्ञान में भेद प्रतीति होती है, उसी तरह से वाणी में भी जो है, स्फोट में भी जो है, वो ध्वनि के क्रम के कारण जो है उसमें घटस्फोट से पटस्फोट भिन्न प्रतीत होता है। वस्तुतः दोनों स्फोट जो है वह एक ही है। इस तरह से 87वीं कारिका को हमने पढ़ा। यहाँ उपप्लवः जो एक नया शब्द आया है उसका अर्थ वो कर लेंगे, भेदः। उपप्लवो ध्रुवा, ध्रुवा माने निश्चित, आ उपप्लव मतलब भेद, माने वाणी में जो उपप्लव होता है, वाणी में जो भेद की प्रतीति होती है वह उसकी स्वयं की नहीं होती, बल्कि वह जो ध्वनि होती है उसका, उसकी व्यंजिका ध्वनि जो होती है उसके क्रम के कारण, उसके भेद के कारण ही जो है वाचः उपप्लव भवति, वाणी में उपप्लव ध्रुव तया प्रतीत होता है, वाणी में भेद जो है ध्रुवतया प्रतीत होता है, वो ध्वनि के कारण होता है। अब 88वीं कारिका को देखें, यथाद्य संख्या ग्रहणम उपायः प्रतिपत्तये संख्यांतराणां भेदेपि तथा शब्दांतरस्तुतिहि। यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया कि ये अखंड स्फोट का जो ज्ञान होता है, उस अखंड स्फोट के ज्ञान में वर्ण पद और वाक्य इसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर ये ज्ञान नहीं होगा, वर्ण पद वाक्य का ज्ञान, तो अखंड स्फोट का भी ज्ञान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? इसको उदाहरण के द्वारा बताया कि यथा आद्य संख्या ग्रहणम उपाय प्रतिपत्ते संख्यांतराणाम भेदे भी, कहा कि ये जितनी संख्याएं हैं एकत्व द्वित्व त्रित्व चतुष्टव पंचत्व सत्व सप्तत्व अष्टत्व नवत्व दसत्व एकादशत्व द्वादशत्व इस तरह से ये संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं में परस्पर भेद है, एकत्व संख्या अलग है और द्वित्व संख्या अलग है, ऐसे ही त्रित्व संख्या अलग है, तो परस्पर संख्याओं में भेद है। फिर भी द्वित्व संख्या के ज्ञान के लिए एकत्व संख्या का ज्ञान आवश्यक है, त्रित्व संख्या के ज्ञान के लिए एकत्व द्वित्व संख्या का ज्ञान जरूरी है, चतुष्टव संख्या के ज्ञान के लिए एकत्व ज्ञान द्वित्व ज्ञान त्रित्व ज्ञान की जरूरत है। जब हम एक समझेंगे, दो समझेंगे, तीन समझेंगे, चार समझेंगे, तब पांच का ज्ञान होगा। जब एक दो तीन चार पांच को समझ लेंगे तब छह का ज्ञान होगा। यद्यपि एक अलग है, दो अलग है, तीन उससे अलग है, चार उससे अलग है, पांच उससे अलग है, फिर भी एक के ज्ञान होने के लिए उससे पूर्व वाली संख्या का ज्ञान, उत्तरवर्ती संख्या के ज्ञान के लिए पूर्ववर्ती संख्या का ज्ञान जरूरी होता है, यद्यपि दोनों परस्पर भिन्न है। इसी तरह से ध्वनि और स्फोट जो है परस्पर भिन्न है, फिर भी स्फोट के ज्ञान के लिए ध्वनि का ज्ञान होना आवश्यक है। अब फिर से पंक्ति को देख लीजिए, यथा आद्य संख्या ग्रहणम उपाय, जैसे आद्य संख्या माने पूर्ववर्ती संख्या जो है वह उत्तरवर्ती संख्या के ग्रहण में माने ज्ञान में उपाय उपाय होता है, उसका जो है बोधक होता है, उसका कारण होता है, प्रतिपत्तये माने ज्ञान आय, उत्तरवर्ती संख्या की प्रतिपत्ति के लिए, उत्तरवर्ती संख्या के ज्ञान के लिए पूर्ववर्ती संख्या का ज्ञान जो है वह उपाय है, उपाय है माने कारण है। संख्यांतराणाम भेदेपि, परस्पर संख्याओं में संख्यांतराणाम मतलब अन्य अन्य संख्या में, इतर इतर संख्याओं में परस्पर परस्परम भेदेपि, परस्पर भेद होने पर भी उत्तरवर्ती संख्या के लिए पूर्ववर्ती संख्या का ज्ञान कारण हुआ करता है। उसी तरह से तथा शब्दांतर श्रुति, ऐसे ही शब्दांतर श्रुति में भी यही तरीका होता है। क्या तरीका? शब्दांतर श्रुति, शब्दांतर से ले लीजिए यहाँ पर वाक्य स्फोट और श्रुति का अर्थ कर लीजिए ज्ञान, तो वाक्य स्फोट के ज्ञान में इसी तरह से मतलब वर्ण का ज्ञान होना, पद का ज्ञान होना जो है उपाय होता है, कारण होता है। यद्यपि पूर्ववर्ती संख्या से उत्तरवर्ती संख्या भिन्न है, उसी तरह से वर्ण और पद से वाक्य जो है वह भिन्न है, फिर भी जैसे उत्तरवर्ती संख्या के ज्ञान के लिए पूर्ववर्ती संख्या का ज्ञान कारण होता है, ऐसे ही वाक्य स्फोट के ज्ञान के लिए जो पूर्ववर्ती जो है वर्ण और पद उसका ज्ञान कारण हुआ करता है। ये इसलिए बताया कि जब अखंड वाक्य स्फोट ही होता है तो फिर वर्ण स्फोट पद स्फोट मानने की क्या जरूरत है, ये जो है ध्वनि मानने की क्या जरूरत है। इसीलिए बताया कि जब तक आप इसको नहीं मानेंगे तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, जैसे जब तक एकत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक द्वित्व का ज्ञान नहीं होगा, ऐसे ही जब तक वर्ण और पद का ज्ञान नहीं होगा तब तक वाक्य का ज्ञान नहीं होगा, जब तक खंड का ज्ञान नहीं होगा तब तक अखंड का ज्ञान नहीं हो पाएगा। 89वीं कारिका में है, प्रत्येकम व्यंजका भिन्ना वर्णा वाक्य पदेषु ये तेषाम अत्यंत भेदेपि संकीर्णा इव शक्तयः, ताकि प्रत्येकम व्यंजका भिन्ना वर्णा वाक्य पदेषु ये माने वाक्य में और पद में जो वर्ण व्यंजक होते हैं वो प्रत्येकम भिन्ना वो परस्पर जो है ना एक दूसरे से भिन्न है। आप जानते हैं कि पद क्या किसको कहते हैं, वर्णों के समूह को पद कहते हैं और पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, तो कुल मिला करके हुआ क्या, वर्ण ही हुए ना, पद में भी वर्ण ही रहते हैं, वाक्य में भी वर्ण ही रहते हैं, और वो जो वर्ण हैं वो परस्पर भिन्न होते हैं। घ वर्ण जो है वो ट वर्ण से भिन्न होता है, ट वर्ण से भिन्न प वर्ण होता है, प वर्ण से भिन्न पट का ट वर्ण होता है, तो इस तरह से प्रत्येकम व्यंजका भिन्ना वर्णा, हाँ ये जो व्यंजक वर्ण है वो प्रत्येकम भिन्ना, वो प्रत्येक भिन्न भिन्न होते हैं, कहाँ पर, तो वाक्य पदेशु वाक्य में और पद में, तेषाम अत्यंत भेदे अभी उन व्यंजक वर्णों में अत्यंत भेद होने पर भी एक दूसरे से भिन्न होने पर भी संकीर्णा इव शक्तयः, जब वह स्फोट का बोध कराता है, वाक्य स्फोट का बोध कराता है। उस समय में उसकी जो शक्तियां होती हैं, शक्तियां कौन सी लेनी है यहाँ पर, तो मात्रा रूपी शक्ति, एक मात्रा, दुई मात्रा, त्रि मात्रा, ये मात्रा शक्ति जो होती है उसमें संकीर्ण रहती है, अर्थात उसमें मिश्रित ही रहती है, वो अलग से प्रतीत नहीं होती है। स्फोट का ज्ञान जब तक नहीं हुआ उससे पहले वह असंकीर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि जब भौ कहेंगे तो एक मात्रा का ज्ञान होगा, घा कहेंगे तो दो मात्रा का ज्ञान होगा, इस तरह से अलग अलग वर्ण के समय में अलग अलग स्थिति, असंकीर्ण स्थिति रहती है मात्रा की। लेकिन स्फोट का जब ज्ञान होता है उस समय में वह संकीर्ण इव शक्तयः, वर्ण की जो शक्तियाँ हैं मतलब वर्ण की जो मात्राएँ हैं वो संकीर्ण रहती हैं, अर्थात मिश्रित रूप में रहती हैं, एक रूप में ही प्रतीत होती हैं, भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत नहीं होती हैं। इस तरह से 89वीं कारिका को हमने पढ़ा, अब 90 संख्या वाली कारिका को जो है हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, आज यहीं रखते हैं।